नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ को सशक्त बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोकतंत्रीकरण का आह्वान किया। विश्व नेताओं की उपस्थिति में नई दिल्ली में भारत एआई इंपैक्ट समिट 2026 का औपचारिक उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने नैतिक और समावेशी एआई के लिए मानव विजन का अनावरण किया, कहा एआई से दुनिया को तभी लाभ होगा जब इसे साझा किया जाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे की सराहना करते हुए इसे विश्व में अद्वितीय बताया। बिहार के मुंगेर में अंतिम सशस्त्र माओवादी के समर्पण के बाद राज्य नक्सल मुक्त घोषित। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा मुफ्त योजनाओं की संस्कृति आर्थिक विकास में बाधा डालती है, राज्यों से रोजगार सृजित करने का आह्वान। और आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 चरण के मुकाबले तय। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के लोकतंत्रीकरण पर बल देते हुए कहा कि इसे विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के लिए समावेशन और सशक्तिकरण का साधन बनना चाहिए। आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
एआई के लिए इंसान सिर्फ डेटा प्वाइंट न बन जाए, इंसान सिर्फ रॉ मटेरियल तक सीमित न रह जाए, इसलिए एआई को डेमोक्रेटाइज करना होगा, इसे इंक्लूजन और एम्पावरमेंट का माध्यम बनाना होगा और विशेष रूप से ग्लोबल साउथ में।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत न केवल नई तकनीकों का विकास कर रहा है बल्कि उन्हें तेजी से अपना भी रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा तकनीकी केंद्र है। उन्होंने कहा कि यह भारत और ग्लोबल साउथ के लिए गर्व का विषय है कि नई दिल्ली में एआई इंपैक्ट समिट का आयोजन किया जा रहा है।
इस समिट का भारत में होना भारत के साथ ही पूरे ग्लोबल साउथ के लिए गर्व का विषय है। दुनिया के कोने कोने से यहां आए महानुभाव इसकी सफलता को नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। इसमें यंग जनरेशन की जो उपस्थिति हमने देखी है वो एक नया विश्वास पैदा करती है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मानव इतिहास में क्रांतिकारी अध्याय जुड़ रहा है। श्री मोदी ने एआई के लिए मानव विजन की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसका अर्थ है नैतिक और सैद्धांतिक प्रणाली, जवाबदेह शासन, राष्ट्रीय संप्रभुता, सुलभ और समावेशी, वैध और न्याय संगत।
मैं मानव विजन प्रस्तुत करता हूँ, एम मॉरल सिस्टम्स, एआई एथिकल गाइडेंस पर आधारित हो, ए अकाउंटेबल गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंट रूल्स एंड नेशनल सॉवरेनिटी, जिसका डेटा उसका अधिकार, ए एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव, एआई मोनोपोली नहीं मल्टीप्लायर बने, वी वैलिड एआई लॉफुल हो।
प्रधानमंत्री ने एआई की परमाणु शक्ति से तुलना करते हुए कहा कि मानवता ने इसके विनाशकारी क्षमता और इसके सकारात्मक दोनों पक्षों को देखा है। श्री मोदी ने कहा कि एआई भी एक परिवर्तनकारी शक्ति है। बाल सुरक्षा के महत्व पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्कूल के पाठ्यक्रम की तरह ही एआई भी बच्चों के लिए सुरक्षित और परिवार के मार्गदर्शन में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर और चिप निर्माण से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक एक मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में सफल होने वाला कोई भी एआई मॉडल वैश्विक स्तर पर लागू किया जा सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि पिछले साल फ्रांस और भारत की सहमेजबानी में पेरिस में आयोजित एआई एक्शन समिट में इस तकनीक के लिए वैश्विक मार्गदर्शक सिद्धांत तय किए गए थे।
पिछले साल जब फ्रांस और भारत ने पेरिस में एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता की थी तो हमने उन तकनीकों के लिए वैश्विक दिशा निर्देश तय किए थे जो हमारे समाज और हमारी अर्थव्यवस्था को बदल देंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव का कल्याण करने की दिशा में काम करेगा और दोनों देश इस क्रांति में विश्वास करते हैं।
भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचे की सराहना करते हुए श्री मैक्रों ने कहा कि भारत ने कुछ ऐसा बनाया है जो दुनिया के किसी अन्य देश ने नहीं बनाया है। उन्होंने कहा कि भारत में 140 करोड़ लोगों के लिए डिजिटल पहचान है, एक भुगतान प्रणाली है जिसमें हर महीने 20 अरब लेन देन होता है और स्वास्थ्य अवसंरचना है जिसके अंतर्गत 50 करोड़ डिजिटल स्वास्थ्य आईडी जारी की गई है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश ने कहा कि एआई सभी के लिए होना चाहिए।
इस सम्मेलन का संदेश साफ है, एआई का असल प्रभाव तब होगा जब हम जीवन को बेहतर बनाने और धरती की रक्षा करने वाली तकनीकों पर काम करें। तो आइए ऐसा एआई बनाएं जिस तक सबकी पहुंच हो और जिसमें गरिमा महत्वपूर्ण हो।
शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं का स्वागत करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार एआई स्टैक के सभी 5 स्तरों पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार ने एक कॉमन कंप्यूट प्लेटफॉर्म बनाया है जो स्टार्टअप्स, शोधकर्ताओं, शैक्षणिक संस्थानों और छात्रों को किफायती दर पर 38,000 जीपीयू उपलब्ध कराता है। श्री वैष्णव ने कहा कि एआई से जुड़े जोखिमों को कम करने के समाधान ढूंढने होंगे।
एआई का लाभ उठाने के साथ ही हमें इससे जुड़े जोखिमों को कम करने के समाधान भी खोजने होंगे। लोगों की सुरक्षा और उनकी गरिमा को एआई के केंद्र में रखते हुए हम इस सम्मेलन और अन्य संयुक्त प्रयासों के माध्यम से दृढ़ता के साथ आगे बढ़ सकते हैं।
श्री वैष्णव ने समिट में नई दिल्ली फ्रंटियर एआई इंपैक्ट कमिटमेंट्स की घोषणा की। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण एआई के प्रति भारत के दूरदर्शी और जिम्मेदार दृष्टिकोण को दर्शाता है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा व्यक्त किया गया मानव विजन मानवता को तकनीकी प्रगति के केंद्र में रखता है। क्लाइम एग्रो एनालिटिक्स के संस्थापक डॉ हर्षित मिश्रा ने कहा है कि कृषि क्षेत्र में काम कर रहे कई स्टार्टअप इस समिट में भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से कई स्टार्टअप फसल को होने वाली हानि, कृषि में जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियों और अन्य विशिष्ट मुद्दों के समाधान पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
वी आर बिल्डिंग क्लाइमेट रिस्क इंटेलिजेंस
प्लेटफॉर्म। हम बेहतर कृषि के लिए जलवायु जोखिम प्लेटफॉर्म विकसित कर रहे हैं, साथ ही महत्वपूर्ण फसलों और जलवायु के बीच परस्पर संबंध को समझने के लिए मशीन एल्गोरिदम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें मौसम के आधार पर फसल प्रबंधन की पद्धतियाँ, उत्पादन बढ़ाने की पद्धतियाँ और वास्तविक समय की जानकारी शामिल है, ताकि हम अपना मॉडल बना सकें। ये शिखर सम्मेलन सभी नव प्रवर्तकों को एक साथ आने का मंच प्रदान करता है।
रियल टाइम इन्फॉर्मेशन टू बिल्ड आवर मॉडल।
स्कैन जेनी साइंटिफिक प्राइवेट लिमिटेड की जनसंपर्क और संचार अधिकारी इशिता पाल ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि इस आयोजन से उन्हें एआई और मशीन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रहे विकास की गहरी समझ हासिल हुई है। एकलव्य इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक आदित्य त्रिपाठी ने कहा कि इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में उनका अनुभव बेहद शानदार रहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार अब पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो गया है। राज्य के अंतिम हथियारबंद माओवादी सुरेश कोड़ा ने मुंगेर में आत्मसमर्पण कर दिया। मुंगेर के पुलिस उपमहानिरीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि नक्सल प्रभावित रहे 23 जिलों में अब कोई भी हथियारबंद नक्सली दस्ता सक्रिय नहीं है।
पूरा बिहार अब नक्सल से पूर्णतः मुक्त है और आज की तिथि में ऐसा कोई भी हथियारबंद सक्रिय नक्सली नहीं है जो बिहार की धरती पर मौजूद है। समूचे बिहार राज्य में जो सक्रिय हो और जो हथियारबंद।
मुंगेर के जिलाधिकारी निखिल धनरा निप्पणेकर ने कहा कि केंद्र सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के अंतर्गत सुरेश कोड़ा को निर्धारित लाभ जल्द उपलब्ध कराया जाएगा।
सुरेश कोड़ा जी को जो आत्मसमर्पण नीति के तहत जो लाभ मिलने हैं तो हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए उसका निष्पादन करेंगे। इसके अलावा उनके पूरे परिवार को और समस्त आदिवासी क्षेत्र में जितने हमारे लोग रहते हैं, तो सरकार की जन कल्याण योजनाएं हैं, सबका लाभ उनको देने के लिए हम लोग विशेष कैंप लगाएंगे।
सुरेश कोड़ा की पत्नी प्रमिला देवी ने आत्मसमर्पण के फैसले पर प्रसन्नता व्यक्त की।
कलिए पति के चलिए जंगल में काहे के भटक रहा है, चलिए बाल बच्चा मिल के सबको रहेंगे खाएंगे सुखी से जिएंगे यही बोले हम। अच्छा लगी रहा।
वर्ष 2012 में राज्य के 23 जिले नक्सल प्रभावित थे। केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से वर्ष 2025 में एक भी नक्सली घटना नहीं हुई। इसी वर्ष 220 नक्सलियों की गिरफ्तारी भी हुई। ये राज्य में शांति और विकास की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि मुफ्त योजनाओं की संस्कृति से देश के आर्थिक विकास में बाधा आ रही है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने कहा कि देश के अधिकांश राज्य राजस्व घाटे में हैं, फिर भी विकास की अनदेखी करते हुए वे इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। न्यायालय ने तमिलनाडु विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बात कही। याचिका में कहा गया है कि उपभोक्ताओं की आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना सभी को मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव किया गया था। पीठ ने कहा कि राज्यों को मुफ्त भोजन, साइकिल और बिजली देने के बजाय रोजगार सृजन पर काम करना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस तरह से मुफ्त की योजनाएं शुरू करने से कोई कार्य करना नहीं चाहेगा। केरल में कोल्लम सतर्कता अदालत ने शबरीमला स्वर्ण मामले में त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष ए पद्म कुमार की जमानत याचिका पर अपना फैसला टाल दिया है। पद्म कुमार ने 90 दिन की हिरासत पूरी करने के बाद वैधानिक जमानत के लिए अदालत का रुख किया था, क्योंकि दरवाजे के फ्रेम में लगे स्वर्ण कांड मामले में अभी तक आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है। जम्मू कश्मीर में एक किशोर सुधार गृह से दो पाकिस्तानी कैदियों के साथ फरार हुए एक गैंगस्टर की तलाश तेज कर दी गई है। इस बीच 5 संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। दोनों पाकिस्तानी नागरिकों को मंगलवार को हरियाणा के अंबाला रेलवे स्टेशन के पास से नेपाल जाते हुए गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान के कराची में आज एक संदिग्ध गैस विस्फोट से एक आवासीय इमारत ढह गई, इसमें 13 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन ने बताया है कि राहत और बचाव कार्य जारी है। पिछले महीने कराची के एक शॉपिंग मॉल में भीषण आग में 80 लोगों की जान चली गई थी। श्रीलंका की जेल से रिहा किए गए 11 मछुआरे चेन्नई पहुंच गए हैं। इनमें से 4 मछुआरे रामनाथपुरम के हैं, जबकि अन्य 7 नागपट्टिनम और मयिलादुथुरई जिलों के हैं। श्रीलंका की नौसेना ने इन्हें पिछले वर्ष जुलाई में अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में घुसपैठ करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उन्हें भारतीय आवर्जन अधिकारियों को सौंपा गया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। देश के कई हिस्सों में कल शाम चांद दिखाई देने के साथ ही आज से रमजान का पवित्र महीना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि ये महीना समाज में एकता की भावना को और मजबूत करेगा। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप का सुपर 8 चरण में 8 टीमों ने अगले दौर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ग्रुप 1 में भारत, दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे हैं, जबकि ग्रुप 2 में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका हैं। शनिवार को टूर्नामेंट के अगले दौर में 8 टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए खेलेंगी। महिला क्रिकेट में कैनबरा में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला जारी है। ऑस्ट्रेलिया ने ताजा समाचार मिलने तक 10 ओवर में बिना किसी नुकसान के 86 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। रविवार को सिडनी में खेले गए पहले मैच में भारत ने डकवर्थ लुईस नियम के अनुसार ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया था। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स में दोपहर के कारोबार के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी में 0.9% की गिरावट देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 750 अंक गिरकर 82,980 पर, जबकि निफ्टी 216 अंक की गिरावट के साथ 25,604 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ को सशक्त बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोकतंत्रीकरण का आह्वान किया। विश्व नेताओं की उपस्थिति में नई दिल्ली में भारत एआई इंपैक्ट समिट 2026 का औपचारिक उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने नैतिक और समावेशी एआई के लिए मानव विजन का अनावरण किया। कहा एआई से दुनिया को तभी लाभ होगा जब इसे साझा किया जाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे की सराहना करते हुए इसे विश्व में अद्वितीय बताया। बिहार के मुंगेर में अंतिम सशस्त्र माओवादी के समर्पण के बाद राज्य नक्सल मुक्त घोषित। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा मुफ्त योजनाओं की संस्कृति आर्थिक विकास में बाधा डालती है। राज्यों से रोजगार सृजित करने का आह्वान। और आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 चरण के मुकाबले तय। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।